सबके लिए जगह हो गया है, यहां भी थोड़े भक्त आ सकते हैं, अगर जगह नहीं है तो यहां भी जगह है। वहां आने जाने के लिए एक रास्ता छोड़िएगा बीच में, और दर्शनार्थी आएंगे तो उनको अंदर जाने के लिए स्थान होना चाहिए। प्रभु जी सब यहां आ सकते हैं। प्रसाद सर्विंग करने के लिए चार भक्तों जो टीम में हैं, कृपया आपको बुलाया जा रहा है बाहर, चार भक्त, बस नंबर चार के भक्त। सब भक्त कृपया आराम से बैठ जाइए, सबको स्थान मिला बैठने के लिए। जय राधे, जय कृष्ण, जय वृंदावन श्री गोविंद रामकुंड राधा कुंड गुरु गोवर्धन काली जन्म जय जय महाकाल। श्यामकुंड राधा कुंड गुरु गोवर्धन काली जन्म जय जय महाकाल। नंदय शोध जय जय गोपाल जय जय विश्वभानु जय श्रीदारी जय पूर्णमासी जय आभिरनाथ। जय जय गोपीश्वर सुंदर हनुमान जय जय कृष्ण सखा पतु जय। जय राम घाट जय गोपीचंदन जय जय वृंदावन वासी जय। जय विजय पाठ परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सतहस्तवान ग्रेस अभय चरणार बिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। श्री मानसी गंगा की जय। श्री हरिदेव जी की जय। गौ प्रेमानंदे समवेत भक्तवृंद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। श्री श्री गुरु गोविंद की जय। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदां मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देहम श्री राधा कृष्ण पादान सहकल ललिता श्री कांश्च वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। कर्म कैसे चल रही है आपकी? ठीक है? ज्यादा कष्ट तो नहीं हो रहा है? अभी तो शुरुआत है। जिस क्षेत्र में हम हैं इस समय, मानसी गंगा और हरिदेव मंदिर, पारंपरिक रूप से यहां से परिक्रमा शुरू की जाती है, क्योंकि हम सबके लिए सुविधाजनक वहां था कुसुम सरोवर में। हमने वहां से चालू किया। जब चैतन्य महाप्रभु आए थे यहां पर, पहले उन्होंने मानसी गंगा में स्नान किया, यहां हरिदेव जी का दर्शन करने आए। यहां पर कई घंटों तक देवी आनंद में कीर्तन और नृत्य करते रहे। यहां पर सभी लोग बड़े प्रभावित हुए चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन और नृत्य को देखकर। तो ये स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है, हरिदेव जी मंदिर। इसके पहले हम मानसी गंगा के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। एक ब्रज में कुंड होगा, सबसे बड़ा सरोवर होगा। पर हुआ ये कि जब अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ लीला कर रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे, तो उस समय कंस ने भेजा हुआ एक असुर, उसने वत्स का रूप धारण किया। वत्स मतलब गाय का बछड़ा। और उसकी इच्छा थी कि मैं किसी तरह से श्री कृष्ण को मार डालूं। तो श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं। कृष्ण तुरंत पहचान गए कि ये तो कोई वत्स नहीं है, बल्कि ये एक असुर है। इस असुर का नाम क्या था? वत्सासुर। क्योंकि उसने वत्स का एक रूप धारण किया और वो असुर था, इसलिए उसका नाम हुआ वत्सासुर। तो कृष्ण बलराम दोनों ही धीरे से उस वत्स के पीछे गए और कृष्ण भगवान ने उसकी टांगें पकड़ी और पकड़ के खूब घुमाया 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 बहुत घुमाया और घुमा के फिर हवा में छोड़ दिया। और जैसे छोड़ दिया तो वो असुर जाके एक ऊंचे पेड़ में गिर पड़ा और हवा में चलते चलते इतनी जोर से उसको घुमाया था भगवान कृष्ण ने कि घुमाते घुमाते ही उसके प्राण शरीर से निकल गए और फिर उस बड़े पेड़ से ऊपर से धार करके नीचे गिर पड़ा जमीन के ऊपर। और सारे ग्वाल बालों को पता चला कि वास्तव में ये वत्स नहीं था, बल्कि ये एक असुर था। और सब ने जय जयकार की श्री कृष्ण की और अभिनंदन देने के लिए सब कृष्ण के पास आए कि कृष्ण तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। उसके बाद ग्वाल बालों ने कहा कि कृष्ण, किया तो तुमने बहुत अच्छा कार्य, एक असुर का वध किया, परंतु था ये वत्स। और तुम जानते हो कि गो हत्या करना ये तो बहुत बड़ा पाप होता है। तो हालांकि ये असुर था, फिर भी एक गाय के रूप में था, इसलिए गो हत्या का पाप तुम्हारे ऊपर है, इसलिए तुम्हें जाके अब गंगा जी में स्नान करना होगा। तो भगवान कृष्ण अपने भक्तों के आदेश का पालन हमेशा करते हैं। जब भक्त कुछ कहते हैं तो भगवान मानते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, आप जैसा चाहे वैसा हम करेंगे। परंतु भगवान ब्रज को छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। गंगा में स्नान करना है तो थोड़ा दूर पर जाना पड़ता है। उन्होंने सोचा यहां ब्रज में ब्रज को छोड़कर, इन भक्तों को छोड़कर भले मैं कैसे जा सकता हूं। तो फिर उन्होंने अपने मन ही मन में गंगा जी को बुलाया और भगवान श्री कृष्ण से के मन से गंगा जी प्रकट हुई, और इसलिए इस सरोवर को कहा गया है मानसी गंगा। है ये साक्षात गंगा देवी, परंतु उत्पन्न हुई है भगवान श्री कृष्ण के मन से, इसे मानस मानसी गंगा। गंगा में स्नान करने से हम पापों से मुक्त हो सकते हैं, हम शुद्ध हो जाते हैं, परंतु इस मानसी गंगा में स्नान करने से न केवल हम पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु हमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भी प्राप्त हो सकता है। तो ये अंतर है मानसी गंगा में और गंगा नदी में, जो कि हिमालय से समुद्र की ओर बहती है। तो मानसी गंगा के तट पर हम वहां गए थे, चक्रेश्वर महादेव, सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर इत्यादि। तो मानसी गंगा के तट पर और बहुत स्थान है, मुखारविंद, इसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। मुखारविंद वो स्थान है जो भगवान का ये गोवर्धन पर्वत का मुख माना जाता है। उसके पहले मानसी गंगा के प्राकट्य के बारे में कुछ और कथा आपको बताएं कि एक बार नंद महाराज और अन्य ब्रजवासी कुछ पौराणिक कथाएं सुन रहे थे, तो गंगा जी के महात्म्य का वर्णन हो रहा था एक कथा में, और एक किसी पुराण में लिखा हुआ है कि एक बार गरुड़ जी एक सांप को पकड़ के ले जा रहे थे। आप तो जानते हैं कि गरुड़ जी का भोजन है सांप, तो सांप को उठाकर वो जब ले जा रहे थे तो गंगा जी के ऊपर से उड़ के जा रहे थे, और गंगा जी के जल से ज्यादा ऊपर नहीं थे, इसलिए जो सांप था जो उनकी चोंच से टंग रहा था उसका स्पर्श जो है वो गंगा के जल से हुआ, और जैसे ही स्पर्श हुआ वैसे ही वो सांप का रूप परिवर्तित होकर एक चतुर्भुज वैकुंठ रूप में वो आ गया। तो गरुड़ जी को देखकर ये ने जब ये देखा तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि अरे गंगा जी का स्पर्श करने मात्र से ये सांप को चतुर्भुज वैकुंठ रूप धारण मिल गया। तो गरुड़ जी ने क्या किया, उस चतुर्भुज रूप को जो पहले सांप था उसके अपने पीठ पर बिठाया और फिर सीधे वैकुंठ चले गए। गरुड़ जी तो वैकुंठ के वासी हैं, तो वैकुंठ में प्रवेश उनको तो है ही, तो सीधे उसको लेकर वैकुंठ चले गए। तो ये कथा जब नंद महाराज ने सुनी तो उनके मन में भी प्रेरणा हुई कि हमें भी गंगा जी में स्नान करना चाहिए। तो सारी तैयारियां होने लगी और सारे ब्रजवासी भी अपनी बोरी बिल से बांध के सब तैयारी होकर जा रहे थे मानसी गंगा की ओर। उस समय श्री कृष्ण वहां पर आए। बाबा बाबा आप कहां जा रहे हो, हम गंगा जी में स्नान करने जा रहे हैं। गंगा जी में क्यों स्नान करने जा रहे हो, गंगा जी तो यहीं पर है, ये है मानसी गंगा है यहां पर। तो नंद महाराज नहीं माना कि छोटा बच्चा भला क्या जाने, अरे ये गंगा का महत्व बहुत है, हमने पुराणों में कल सुना था, तो गंगा अलग है, ये तो कुंड है, हमारे ब्रज का कुंड है ये एक। नहीं नहीं ये तो गंगा है, गंगा से ज्यादा अधिक है। तो आइए आइए आइए। तो भगवान श्री कृष्ण की बातों को कौन रोक सकता है, महाराज नंद का कृष्ण के प्रति इतना स्नेह था कि इनकार नहीं कर पाए, चलो ठीक है जाते हैं देखते हैं क्या है इस सरोवर में, क्या खूबी है। और जैसे ही वो सब वहां पर पहुंचे मानसी गंगा के तट पर, तो मानसी देवी, मानसी गंगा देवी स्वयं प्रकट हुई कृष्ण के सामने और उनको प्रणाम किया। मानसी गंगा को जब नंद महाराज और अन्य ब्रजवासियों ने देखा तो तब उनको विश्वास हुआ कि हाँ ये प्रत्यक्ष गंगा देवी ही हैं और ये सरोवर भी गंगा के जल के बराबर है, बल्कि इससे श्रेष्ठ है। इसलिए फिर और दूर ब्रज के बाहर कहीं गंगा जी में स्नान करने का विचार उन्होंने त्याग किया और यहीं पर सारे ब्रजवासियों ने मानसी गंगा में स्नान किया। गंगा में और कई कहानियां और कई लीलाएं हुई थी का वर्णन जीव गोस्वामी अपने गोपाल चंपू ग्रंथ में करते हैं। गोवर्धन पर्वत जो है पहले बहुत विशाल हुआ करता था, लेकिन एक श्राप की वजह से वो कम होता गया और आज ज्यादा से ज्यादा वो 80 फुट की ऊंचाई में है। बल्कि पहले वो उसकी ऊंचाई थी करीब करीब 8 योजन, इतनी ऊंचाई थी, पर आज बहुत कम हो गया है। तो उसी प्रकार से मानसी गंगा भी भगवान श्री कृष्ण के समय काफी बड़ा था, अभी कम दिख रहा है मानसी गंगा प्रकट रूप में। तो भगवान श्री कृष्ण यहां पर इस मानसी गंगा में नौका विहार करते थे गोपियों के साथ। तो एक बार ऐसे हुआ कि सारी गोपियां गोवर्धन के इस पार से उस पार जाना चाहते थे, और उन्होंने अपने मटके लिए थे, मटके में दही था, दूध था, और दूध के तरह तरह के स्वादिष्ट बनाए हुए स्वादिष्ट व्यंजन थे जो कि वो उस तरफ बेचने के लिए जा रहे थे। अब जब वो मानसी गंगा के तट पर आई, उन्होंने देखा कि केवल एक ही नौका वहां पर है, और उस एक नौके में जो माझी है, नौका चलाने वाला आदमी है, वो तो आराम से वहां लेटा हुआ है और एक कंबल जैसे कुछ बांधा हुआ है, सारे शरीर में लपेटा हुआ है। तो जाकर बोले, ए माझी, हमको ले जाओगे क्या? तो बोले, ठीक है, ले जाएंगे, क्या कीमत होगी? तो काफी बातचीत हुई आपस में, फिर अंततः कुछ तय हुआ कि आपके पास जो मिठाई है, जो दही दूध है, उसका अमुक अंश जो है वो हमें मिलेगा, ये हमारा फी होगा, कर होगा आपको ले जाने के लिए। ठीक है, तो सब बैठे। अब ये व्यक्ति कौन थे हम आपको बताएंगे नहीं, आप जान गए कौन थे? कौन थे? कृष्णा। लेकिन एक माझी का वेश धारण करके वहां पर बैठे थे, गोपियों ने उनको पहचाना नहीं, और सब बैठ गए। नौका चलाना शुरू किया हमारे माझी ने, और थोड़ी ही देर बाद थोड़ा सा बोलने लगे कि अब मैं बहुत ही भूखा हूं, तो आपके मुझे मिठाई वगैरह दे दीजिए, नहीं तो मैं आगे नहीं चल पाऊंगा, मेरे शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं है, जब तक कि कोई पोषण नहीं आ जाए शरीर में, मैं आगे चला नहीं पाऊंगा। तो गोपियों को गुस्सा आ गया कि अरे, हम तो बेचने जा रहे हैं, अभी हमारी सारी मिठाइयां खा लेगा, दूध पी लेगा, तो क्या होगा? लेकिन उन्होंने सोचा कि और कोई चारा नहीं है, कोई उपाय नहीं है, तो चलो खिला लो। तो फिर श्री कृष्ण को उन्होंने थोड़ा कुछ खिलाया, भगवान कृष्ण ने पेट भर के ये स्वादिष्ट व्यंजन ग्रहण कर लिए, और ग्रहण करने के बाद फिर अपने चरण फैला लिए, हाथ फैला लिए, और कहे, अभी मेरा पेट बहुत भर गया, अब मैं थोड़ी देर नहीं सोना चाहता हूं, थोड़ी मुझे नींद आ गई है, तो विश्राम कर लेता हूं। तो विश्राम कर लिए, गोपियों को और गुस्सा आया कि ए माझी, ये क्या चल रहा है, चलो नौका चलाओ, हमको पहुंचना है जल्दी वहां पर। अरे चलाएंगे बाद में, अच्छा पहले ऐसे करो, आप एक गोपी यहां इस तरफ आओ, एक गोपी इस तरफ, मेरे दोनों पैरों का मालिश करना, और दो गोपी इधर आना, मेरे हाथों का मालिश, भुजाओं का मालिश करना। तो गोपियां कहने लगी, अच्छा हम जरूर तुम्हारे हाथ और पैर पकड़ेंगे, लेकिन पकड़ के उठा के पानी में फेंक देंगे, इसलिए अब ज्यादा मालिश की बात नहीं करना। तो फिर वो माझी डर के जो है बैठ गया, फिर से चलाने लगा, और थोड़ी देर चलने के बाद कहने लगा कि देखो, अब यहां कुछ नौके में छेद लग रहा है, और छेद में से पानी आ रहा है नौके के अंदर, अब लग रहा है कि शायद नौका डूब जाएगा, डूब जाएगा, डूब जाएगा। सारे गोपियों में हलचल मच गया, अरे कुछ करो। कहा, इसके लिए एक उपाय है कि नौके के अंदर जो वजन है उसको कम करना चाहिए। तो कैसे कम करेंगे? तो आपके जो मटके हैं, दही दूध मक्खन के, वो सब फेंक दो अंदर। अरे फेंक देंगे तो, नहीं तो जान बचाना है तो ऐसे करना होगा आपको। तो सारे गोपियों ने बिना ज्यादा सोचे हुए उनके जो मटके थे, मक्खन दूध दही वगैरह के, वो सब अंदर डाल दिए। आखिर हर एक व्यक्ति को अपने प्राण प्रिय है, और अपने प्राण को बचाए रखने के लिए थोड़ा दूध या मक्खन त्यागना पड़े तो वही सही। तो सारे मटके अंदर चले गए, फिर कृष्ण ने कहा, अभी तो गोपियों को पता नहीं है कि ये कृष्ण है, तो कृष्ण कहने लगे, अभी भी पर्याप्त मात्रा से वजन कम नहीं हुआ, आपके जितने भी भारी भारी गहने हैं वो सब उठा के फेंक दीजिए। अरे ये कैसे हम करें? हाँ, हम सबका प्राण बचाए रखने के लिए एकमात्र उपाय है। तो ठीक है, गोपियों ने वैसे भी कर दिया। फिर कृष्ण ने कहा कि और वजन कम करना है तो आपके जितने भी वस्त्र हैं वो भी डाल दीजिए। तब गोपियों को बहुत गुस्सा आया, अभी वस्त्र तो क्या, अगर वजन की समस्या का समाधान करना है तो हमारे लिए बहुत अच्छा उपाय है, तुम्हें ही पकड़कर अंदर डाल देते हैं तो वजन कम हो जाएगा, यह शांति हो जाएगी। तो कृष्ण और थोड़े डर गए, फिर से और चलाने लगे, और अचानक उधर तूफान वगैरह आने लगा, और भगवान श्री कृष्ण सारे गोपियों को सांत्वना देने लगे कि कोई बात नहीं, मैं बहुत सक्षम हूं, मैं सब संभाल पाऊंगा। और उनको ये दिखाने के लिए कि वो नौके को संभाल पाएंगे, वो जानबूझकर नौके को हिलाने लगे, ये दिखाने के लिए कि देखो हिलने के बाद भी नौका डूब नहीं रहा है, आप लोग चिंता नहीं कीजिए। उधर जब नौका ऐसे वैसे हिल रहा था तो गोपियां बहुत डर गईं, और विशेष करके श्रीमती राधारानी झटके से आके सीधे कृष्ण के ऊपर आके गिर पड़े, और उस समय उनको पता चला कि ये तो माजी साधारण माजी नहीं, ये कौन है, तुरंत पहचान गए उस समय। और सारे गोपियां पूछ रहे थे कि अरे राधारानी ये क्या है, कहां गई हो? फिर राधारानी ने पीछे से कृष्ण की बांसुरी निकाली और सबको दिखाया, ये देखो ये माजी हमारा कौन है। और फिर उसके बाद सब शांत हो गई, और कृष्ण भगवान ने सारे गोपियों को नौका विहार कराया, सारे मानसी गंगा में घुमाया। तो ये लीला सब यहाँ पर मानसी गंगा में हुई, और ऐसे कई लीलाएं हैं जो वर्णित हैं थोड़े, और जिनका वर्णन किसी ने शायद अभी तक किया नहीं होगा, अनंत लीलाएं हैं। ऐसे बताया जाता है कि गोवर्धन का जो आकार है वो एक मोर के समान है, जिसने अपने गर्दन को घुमा लिया है और उसकी चोंच जो है अपने ही गर्दन के अंदर डाल रहा है, ऐसे आकार का गोवर्धन पर्वत बताया जाता है। तो ऐसे मोर रूपी गोवर्धन के आंख हैं राधा कुंड और श्याम कुंड, और मानसी गंगा इस मोर का मुख माना जाता है, चेहरा, और जो मुंह है वो है मुखारविंद। हम जब चक्रेश्वर महादेव पे खड़े थे घाट के ऊपर, हमने इशारा करके दिखाया था, आपको याद है ना, कि उस पार जल के उस पार था मुखारविंद, तो वो भगवान का मुखारविंद है। ग्वाल पोखर जहां पर भगवान ने वन भोजन किया था अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ, आपको याद है, वहीं से आए, तो वो इस मोर के कान माने जाते हैं, और दान घाटी जहां हम जाएंगे उनका गर्दन माना जाता है, और आगे चल के जब हम बलराम स्थली को पहुंचेंगे और पूंछड़ी का लोटा बाबा वो स्थान में पहुंचेंगे तो वो है उस मोर का पूंछ। तो इस प्रकार से गोवर्धन का आकार बताया जाता है। तो यहां पर मुखारविंद, ये यहां पर गिरिराज शिला है, और साथ में भगवान के मुकुट की निशानी भी है। यहां पर ब्रजवासी साधारणतः आके बहुत सारे दूध वगैरह से अभिषेक कराते हैं इस गिरिराज शिला का, और तरह तरह के दूध के पदार्थ और अन्य व्यंजन अर्पण करते हैं श्री गिरिराज गोवर्धन के प्रसन्नता के लिए। और यहां से फिर वो अपनी परिक्रमा शुरू करते हैं, मानसी गंगा में स्नान करते हैं और परिक्रमा करके वहीं पर समाप्त करते हैं। वैसे ऐसे कई मुखारविंद बताए जाते हैं। जब हम जतिपुरा में पहुंचेंगे लौटते वक्त, आज नहीं होगा वो कल होगा, तो वल्लभ संप्रदाय के भक्त कहते हैं कि वो भी मुखारविंद है गोवर्धन का, परंतु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि यहां मानसी गंगा में जो मुखारविंद है वही प्रामाणिक मुखारविंद है, इसलिए हम भी इसी को ही प्रामाणिक मुखारविंद मानते हैं। बंद हुआ ये मानसी गंगा, और यहां पर हम आए हैं हरिदेव मंदिर में। इसके पहले चक्रेश्वर महादेव से लेकर जब हम यहाँ पर आ रहे थे उसी रास्ते में बाईं तरफ पड़ता है पंच तीर्थ कुंड। यहाँ पांच पवित्र नदियों का जल है उस कुंड में। हम वहां नहीं जा पाए, वहां वैसे लोगों को अनुमति नहीं है अंदर जाने के लिए। वहां पर भी राधा कृष्ण की कई मधुर लीलाएं हुई थी। नर्मदा, गोमती, सरयू, वेत्री और कांची, इन पांच पवित्र नदियों का जल इस कुंड में है। और फिर वहां से हम चले आए सीधे हरिदेव मंदिर। ये हरिदेव मंदिर, ये प्रतिभू मूर्ति है श्री हरिदेव जी की। प्रतिभू मतलब कि जो मूल मूर्ति के स्थान में नई मूर्ति जब विराजते हैं तो उनको प्रतिभू मूर्ति कहते हैं। यहां से मुगलों ने जब आक्रमण किया था तो यहां मूल जो हरिदेव की मूर्ति थी उनको ले जाया गया था कानपुर के पास, एक स्थान है राजधानी वहां पर। और ऐसे बताया जाता है कि वहां से मूर्ति चोरी हो गई दुर्भाग्य से, तो आज मूल मूर्ति हरिदेव जी की प्रकट नहीं है, कम से कम पता नहीं है कि कहां है वो मूर्ति। तो प्रतिभू मूर्ति जो है वो यहां पर है। ये मंदिर, इस मूल विग्रह की स्थापना भी वज्रनाभ ने की थी। वज्रनाभ का महत्व ब्रज में बहुत है, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण पुराने प्राचीन काल के जो मूर्तियां हैं, विग्रह हैं, उन सब की स्थापना वज्रनाभ ने की थी, जो श्री कृष्ण के प्रपौत्र थे। के प्राकट्य का रहस्य इस प्रकार से है कि एक बार इसी स्थान में श्रीमती राधा रानी और गोपियां श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थीं, और श्री कृष्ण को आने में विलंब हुआ तो काफी चिंतित हो गई श्रीमती राधा रानी और गोपियां कि अभी तक श्री कृष्ण आए नहीं। तो ऐसे चिंतित चिंतित होते होते काफी विचलित हो गए थे वो। और उसी समय ये मूर्ति प्रकट हुई वहां पर। और इस मूर्ति की विशेषता क्या है, आप देखेंगे कि एक एक भुजा से उन्होंने गोवर्धन को धारण किया हुआ है और दूसरे में उनकी बांसुरी है। तो इस सुंदर रूप को देखकर गोपियां बिल्कुल आकर्षित हो गईं, उनका मन शांत हो गया और हर्ष उल्लास से उन्होंने इस मूर्ति की सेवा करना आरंभ किया। और जब ऐसे सेवा की, फिर यहां पर ये हर बार पर यहां जब भी आती थी यहां पर इस मूर्ति की सेवा करती थी। फिर यहां पर इसकी स्थापना हुई और इस मंदिर की स्थापना भी एक राजपूत राजा ने किया था और उनका नाम हम भूल गए, लेकिन उनके पुत्र थे मान सिंह, जिन्होंने वृंदावन के गोविंद जी मंदिर को बनाया। तो उनके पिता थे जिन्होंने इस मंदिर को बनाया, हरिदेव मंदिर को। इसको भी बने हुए काफी समय हो गया। तो हरिदेव मंदिर में भी यहाँ चैतन्य महाप्रभु आए थे, उन्होंने भी बहुत संकीर्तन यहाँ पे किया था। तो ये स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही पावन स्थान है ये। अब यहाँ से हम परिक्रमा के लिए आगे जाएंगे। आगे जाते जाते ये तो गोवर्धन शहर में, नगर में हम लोग पहुंच गए हैं। अभी नगर पालिका यहाँ की नगर है गोवर्धन, और वहां पर हम जब जाएंगे तो दाहिनी ओर दान घाटी है। दान घाटी वो स्थान है जहां पर श्री कृष्ण राधा रानी और अन्य गोपियों को रोका करते थे, जबकि वो मक्खन दही वगैरह लेकर जाया करती थी और उनसे कर मांगते थे और उन दोनों के बीच में वाद विवाद होता था। ऐसे कर वसूली की लीलाएं ब्रज में कई जगह दिखाई पड़ती हैं। हम बरसाना कल गए थे तो हमने ये भी देखा था कि वहां पर भी सांकरी खोर में श्री कृष्ण दान वसूल करते थे, कर वसूल करते थे। तो दान घाटी मंदिर आगे है। मंदिर वैसे गोवर्धन के ऊपर है, जब हम परिक्रमा में चलेंगे तो दाहिनी ओर गोवर्धन होगा, तो गोवर्धन के ऊपर ही आपको एक मंदिर दिखाई पड़ेगा जिसका नाम है दानी राय मंदिर। वो दान घाटी के लीला के लिए है वो मंदिर। लेकिन वहां अब कुछ नहीं है और उसके स्थान में यहीं पर मुख्य रास्ते पर एक दान घाटी गिरिराज मंदिर है, तो वहां पर अभी पूजा होती है। तो दान राय मंदिर में कुछ नहीं होता इस समय, और सीधा हम आगे जाएंगे और वहीं पर बाएं ओर एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है। लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाने के लिए हमें संभव होगा या नहीं ये पता नहीं, लेकिन अगर संभव होगा भी तो हम शीघ्र दर्शन करके तुरंत बाहर निकल आएंगे। ये लक्ष्मी नारायण मूर्तियां जो हैं, ये गोवर्धन की उत्सव मूर्तियां मानी जाती हैं। उत्सव मूर्ति आप जानते हैं ना, जब विग्रह बड़े होते हैं तो उनको बाहर कोई शोभा यात्रा के लिए ले जाना संभव नहीं होता है, परंतु जो छोटे मूर्तियां होती हैं उनको ले जाया जाता है बाहर विजय यात्रा में या शोभा यात्रा में पालकी के ऊपर सवार करके। तो ये विजय मूर्ति या उत्सव मूर्ति मूल मूर्तियों से अभिन्न माने जाते हैं। तो ये लक्ष्मी नारायण की मूर्ति जो है ये गोवर्धन की उत्सव मूर्तियां मानी जाती हैं। बेलगाम में आप 3 साल पहले आप आलवारों की कथा सुन चुके हैं। आलवार कौन थे? श्री संप्रदाय के महान वैष्णव भक्त थे जो दक्षिण भारत में रहा करते थे। तो श्री संप्रदाय के विशेष करके आलवारों के संप्रदाय में प्रथा में ऐसे 108 विशेष महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान या मंदिरों का वर्णन है जिनको दिव्य देशम कहते हैं, और प्रमुखतः 108 दिव्य देशम में से कई हैं ऐसे, उनमें से 2-3 तो इस भौतिक जगत के परे हैं, लेकिन अन्य भी कई हैं, थोड़े ब्रज में हैं, उनमें से ये एक दिव्य देशम माना जाता है जो लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। तो दान घाटी हम आते आगे जाते जाते दान घाटी को केवल दूर से देखेंगे, रास्ता है वहां पर, अब कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, अब सरकार ने रास्ता बना दिया है। और दान घाटी को देखकर, लक्ष्मी नारायण को देखकर आगे परिक्रमा को चलेंगे, वहां दाहिनी ओर ऊपर गोवर्धन का दर्शन हम करेंगे। कम से कम हाथ जोड़कर गोवर्धन से प्रणाम करना चाहिए क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से गोवर्धन का दर्शन हमें होगा। और आगे चलते चलते फिर बाईं ओर हमारे इस्कॉन का मंदिर है, और यहां हम अंदर नहीं जा पाएंगे, मंदिर छोटा है और हम भक्त बहुत अधिक संख्या में है, इसलिए केवल बाहर से ही हम दर्शन करके चले जाएंगे। सीधे हम परिक्रमा करते करते आगे जाएंगे और आगे अलग स्थानों में कथा अलग से होगी। हरे कृष्णा। तो कोई प्रश्न है आपके? के सार का वर्णन कीजिए, ये हम राधा कुंड में करेंगे, यहां नहीं, वो कल होगा जब राधा कुंड में पहुंचेंगे।
अब क्या टाइम हुआ
आपको? बहुत ज्यादा भूख लगी है? तो अगर ज्यादा भूख लगी है तो जल्दी से परिक्रमा में चलना चाहिए आपको, और गोविंद कुंड पहुंचेंगे और वहां पे हमारे लिए प्रसाद प्रतीक्षा कर रही है, सब रेडी है, पत्तल भी लगे हुए हैं, तो जल्दी से चल के हम अभी गोविंद कुंड जाएंगे। श्री गोविंद कुंड की जय, श्री गोवर्धन परिक्रमा की जय, गौर प्रेमानंदे।